ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय।
आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। आप सब बकायदा आते हो भगवतम क्लास के लिए? तो आज हम भागवतम के साथ स्कंद के पहले अध्याय को पढ़ रहे हैं और मुझे कहा गया था 5 श्लोक है, 38 to 43। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय।
तो आज हम 5 श्लोक पढ़ेंगे। आप कहोगे क्यों? क्योंकि 4 श्लोकों का कोई तात्पर्य नहीं है, पर बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है, और फिर 5वें श्लोक का तात्पर्य है। तो संस्कृत हम पढ़ेंगे टेक्स्ट 43 का, और अनुवाद के वगैरह पढ़ेंगे 5 श्लोक। तो पहले हम पिछले 4 श्लोकों का अनुवाद पढ़ेंगे और फिर आज के श्लोक का अनुवाद।
श्लोक संख्या 38। जय तथा विजय नामक द्वारपालों द्वारा इस प्रकार रोके जाने पर सनंदन तथा अन्य मुनियों ने क्रोध पूर्वक उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, अरे दोनों मूर्ख द्वारपालों, तुम तत्व तथा तमोगुण से शुभित होने के कारण मधुर द्विज के चरण कमलों की शरण में रहने के अयोग्य हो, क्योंकि वे ऐसे गुणों से रहित हैं। तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा कि तुरंत ही भौतिक जगत में जाओ और अत्यंत पापी असुरों के परिवार में जन्म ग्रहण करो। श्लोक संख्या 39। मुनियों द्वारा इस प्रकार शापित होकर जब जय तथा विजय भौतिक जगत में गिर रहे थे तो उन मुनियों ने उन पर दया करके इस प्रकार संबोधित किया, हे द्वारपालो, तुम तीन जन्मों के बाद वैकुंठ लोक में अपने अपने पदों पर लौट सकोगे, क्योंकि तब श्राप की अवधि समाप्त हो चुकी होगी। श्लोक संख्या 40। भगवान के दोनों पार्षद जय तथा विजय बाद में दिदि के दो पुत्रों के रूप में जन्म लेकर इस भौतिक जगत में अवतरित हुए। इनमें हिरण्यकश्यपु बड़ा तथा हिरण्याक्ष छोटा था। सारे दैत्यों तथा दानवों असुर योनियों द्वारा दोनों का अत्यधिक सम्मान किया जाता था। श्लोक संख्या 41। भगवान श्री हरि ने नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर हिरण्यकश्यपु का वध किया। जब भगवान गर्भोदक सागर में गिरी हुई पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे तो हिरण्याक्ष ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया और बाद में भगवान ने वराह के रूप में हिरण्याक्ष का वध कर दिया। श्लोक संख्या 42। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को, जो भगवान विष्णु का महान भक्त था, मारने के लिए नाना प्रकार के कष्ट दिए। श्लोक संख्या 43।
ये आज का श्लोक है।
समस्त जीवों के परमात्मा भगवान गंभीर, शांत तथा समदर्शी हैं। चूंकि महान भक्त प्रहलाद भगवान की शक्ति द्वारा सुरक्षित था, अतएव हिरण्यकश्यपु नाना प्रकार के यत्न करने पर भी उसे मारने में असमर्थ रहा। तात्पर्य, इस श्लोक में सर्वभूतात्म भूतम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में समान भाव से स्थित हैं, अतः ना उनका किसी से द्वेष है ना मित्रता, उनके लिए सभी समान हैं। यद्यपि कभी कभी वे किसी को दंड देते प्रतीत होते हैं, किंतु ये वैसे ही है जैसे कि बच्चे के कल्याण के लिए पिता बच्चे को दंड देता है। भगवान प्रदत्त दंड भगवान की समदर्शिता का सूचक है, अतः भगवान को प्रशांतम समदर्शनम कहा गया है। यद्यपि भगवान को अपनी इच्छा की पूर्ति ठीक से करनी होती है तो भी वे सभी परिस्थितियों में समभाव बने रहते हैं, वे सबके प्रति समदर्शी हैं।
ये जो पांच श्लोक आपने आज सुने, इनका उच्चारण नारद मुनि जी कर रहे हैं। इस अध्याय के आरंभ में परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, उन्होंने पूछा कि भगवान क्या किसका पक्ष लेते हैं कभी, कि सबके प्रति समानता का स्वभाव भाव होता है। कई बार लोग सोचते हैं अगर उन्हें कष्ट भुगतना पड़े कि भगवान हमारे से खुश नहीं है, ये परिणाम हमें क्यों भुगतना पड़ रहा है। हम भूल जाते हैं कि हम सबको हमारे कर्मों का संस्कार परिणाम भुगतना पड़ता है। भगवान जो है सबके प्रति समानता का भाव रखते हैं। तो परीक्षित महाराज जानना चाहते थे और उन्होंने ये प्रश्न पूछा, तो नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं कि भगवान जो है बिल्कुल न्यूट्रल है, किसी का पक्ष नहीं लेते। और आगे जाकर नारद मुनि ने जय विजय की कथा सुनाई। कुछ दिन पहले, दो हफ्ते पहले आपने नरसिंह चतुर्दशी उत्सव मनाया था और आपने यही कथा सुनी होगी। इस वक्त हम सातवें स्कंद को पढ़ रहे हैं, उस वक्त इस स्कंद में आप प्रहलाद महाराज और हिरण्यकश्यपु और नरसिंहदेव की कथा सुनोगे। तो आज के श्लोकों में नारद मुनि क्या कह रहे हैं? सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जय विजय जो भगवान के द्वारपाल थे, उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र जो कुमारा हैं, चार कुमारा, उनको वैकुंठपुरी के सातवें द्वार में प्रवेश करने से रोक दिया। ब्रह्मा जी के चार बेटे थे जिनका नाम है कुमारस, कई बेटे थे खासकर ये चार, सुन, और ये चार बेटे थे, इनके पास योगिक सिद्धियां थी, इसलिए हालांकि आयु में वो सबसे बड़े थे पर देखते थे कैसे जैसे वो 5 साल के बालक हैं। उन्होंने अपने शरीर को बड़े होने से रोक दिया। क्यों? पिता की इच्छा थी कि वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें और कुमारराज की इच्छा थी कि वो ब्रह्मचारी रहे। और छोटे, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को बड़े होने से रोक दिया, तो छोटे बच्चे के समान ही दिखते थे। छोटे बच्चे जैसे आप जानते हो नंगे भी घूमते हैं, तो कुमारराज के पास खास योगिक सिद्धियां थी जिसके द्वारा वो किसी स्थान में भी यात्रा कर सकते थे। तो यात्रा करते करते वैकुंठपुरी पहुंच गए, भगवान के धाम। वैकुंठ धाम में हर प्रकार की सुविधा है। सबसे पहले वैकुंठ का अर्थ है जहाँ की किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। ये जो भौतिक जगत है ये है कुंथ जगत, जहाँ कष्ट ही कष्ट, चाहे आप कितना भी प्रयास करो। हर व्यक्ति प्रयास करता है कि कष्टों का दर्शन नहीं मिले, सच बात है। हर व्यक्ति का प्रयास रहता है कभी डॉक्टर साहब का शक्ल नहीं देखनी पड़े, कभी बीमार नहीं हो। पर हम क्या देखते हैं कि हमें कष्टों को भुगतना ही पड़ता है बिना मांगे। पर वैकुंठ धाम में किसी प्रकार का कष्ट नहीं, क्लेश नहीं। भगवान हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं, क्या आओ, कहाँ आओ, वैकुंठ धाम। और हमारी क्या स्थिति है? हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ सुखी हैं। भगवान कह रहे हैं आओ वैकुंठ धाम। तो कुमारराज यात्रा करते करते पहुंच गए कहाँ? वैकुंठ धाम में। और जब वैकुंठ धाम में पहुंचे वहाँ उन्हें इतना आनंद आया, उन्होंने भगवान के चरणों की बड़ी खूबसूरत तुलसी के पत्तों का स्मेल आया जो उनको बड़ा अच्छा लगा। उनके शरीर ने इतना आनंद अनुभव किया कि वो सोच रहे थे इस स्थान में ही हमें रहना चाहिए हमेशा के लिए। और पहले 6 द्वारों से वो निकल गए थे बड़े आसानी से। वो जब 7वें द्वार में पहुंचे तो वहाँ जो द्वारपाल थे जय विजय, उन्होंने उन्हें रोक दिया। जय विजय मंदिरों की सुरक्षा करते हैं, भगवान के धाम की प्रभु सुरक्षा करते हैं। हो गया, दक्षिण भारत में आप जाओ तो हर मंदिर के सामने जय विजय की मूर्ति होती है। तो जय विजय ने उन्हें रोक दिया अंदर आने से, जिसके कारण कुमार ने बड़ा अपमान महसूस किया और क्रोधित होकर कहा कि तुम दो योग्य नहीं हो भगवान के धाम में सेवा करने के लिए। तुम दोनों में राजसिक और तामसिक भाव का बड़ा प्रभाव है, तुम्हें इस भौतिक जगत से निकल जाना चाहिए। असल में एक समय लक्ष्मी जी आई थी भगवान का दर्शन लेने के लिए। वो लक्ष्मी जी को भी जय विजय ने रोक दिया। जय विजय ने कहा भगवान विश्राम कर रहे हैं इस समय, अब नहीं उन्हें नहीं जगा सकते। और लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा था कि इन दो द्वारपालों को सजा भोगनी चाहिए, उन्होंने मुझे रोका भगवान का दर्शन लेने से। तो जय विजय ने जब रोका और कुमारराज ने गुस्से होकर कहा तुम योग्य नहीं हो यहाँ रहने के लिए, तो उस समय भगवान ने यह वार्तालाप सुन लिया था। भगवान भी आए आगे देखने के लिए क्या घटना बीत रही है। और जब कुमारराज ने देखा कि भगवान इतने प्रेम और स्नेह के साथ अपने द्वारपालों से चर्चा कर रहे हैं, तो उन्हें लगा कि उन्होंने गलती कर दी है और वो अपने श्राप को वापस लेना चाहते थे। भगवान ने कहा ये मेरी इच्छा है कि तुम इन दो को श्राप दो। क्यों? क्योंकि भगवान प्रकट होने वाले थे इस पृथ्वी पर और भगवान की लीला को और मधुर बनाने के लिए भगवान की भक्ति असुरों का कार्य करते हैं। इसलिए जब आप देखोगे किस प्रकार की तपस्या इन्होंने काशीपुर ने उठाई, आप आश्चर्य हो जाओगे, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति इस प्रकार की तपस्या नहीं उठा सकता। तो जय विजय को जब श्राप दी गई, वो घबराए नहीं, उनके मन में एक ही इच्छा थी, क्या? जो सजा देना दीजिए, पर ऐसी सजा दीजिए कि हम हर स्थिति में कृष्ण का स्मरण कर सकें और कभी कृष्ण को भूले नहीं। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी अनेक विधियों का वर्णन करते हैं। अंत में रूप गोस्वामी जी कहते हैं, इन सब विधियों का मूल उद्देश्य यह है कि तुम सदा कृष्ण का स्मरण करोगे और कभी कृष्ण को भूलोगे नहीं। तो हम सब का भी यह भाव होना चाहिए। यह भाव है आप भक्तों का? नहीं। हमारा भाव क्या है? सदा भगवान को भूलो और कभी कभी स्मरण करो। पर भक्तों का भाव ये रहता है कि हर स्थिति में भगवान का स्मरण करो। इसलिए भगवान गीता में भी कहते हैं, मन मनोभाव मन भक्तो मर्याजी मन नमस्कार। तो जय विजय ने कहा, जो सजा देनी है दीजिए, पर ऐसी सजा मत दीजिए कि हम भगवान को भूल जाए। तो हमें ऐसी सजा दो कि हम सदा भगवान का स्मरण कर सकें। और जय विजय ने क्योंकि अपराध किया था, कुमारास को रोका वैकुंठ धाम के में प्रवेश करने से सातवें द्वार के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि हम सजा भी भोगने को तैयार है। तो इस विषय में प्रापा जी समझाते हैं आगे के तात्पर्य में कि हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। जय विजय का अपराध यह था कि इन्होंने कुमारास को रोक दिया भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त करने से। तो हमें वैष्णव अपराध से बचना है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जिस प्रकार एक सुंदर बगीचा नष्ट हो जाता है पागल हाथी के आने से, उसी प्रकार वैष्णव अपराध के द्वारा भक्ति का जो लाभ है वो समाप्त हो जाता है। तो यहाँ इन श्लोकों में आप क्या पढ़ रहे हो? 38 श्लोक में पढ़ रहे हो कि कुमारस ने कहा तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो, और भगवान के धाम के विषय में भागवतम के तीसरे स्कंद में आप पढ़ते हो कि भगवान के वैकुंठ धाम में जो पुरुष हैं इस पृथ्वी के पुरुषों से लाखों गुना ज़्यादा खूबसूरत हैं, और जो स्त्रियां हैं यहाँ की स्त्रियों से लाखों गुना ज़्यादा खूबसूरत हैं। और हर व्यक्ति के पास वैकुंठ धाम में एक हवाई जहाज है, और हवाई जहाज के साथ हर व्यक्ति के पास पायलट का लाइसेंस भी है। जैसे आप मोटर चलाते हो, वहाँ हर व्यक्ति हवाई जहाज चलाता है, और हवाई जहाज और घर सजा हुआ है किसके साथ? हीरे और मोतियों के साथ। तो ये है सुख जो आप सबको प्राप्त हो सकता है अगर आप वैकुंठ धाम में प्रवेश करो। और वैकुंठ धाम में प्रवेश करने के लिए किस कार्य की आवश्यकता है? शुद्ध भक्ति की। शुद्ध भक्ति के माध्यम से अशुद्ध भाव नष्ट होते हैं और वैकुंठ धाम लौटने के योग्य बन सकते हो। और प्रभु जी के ग्रंथ में हमें क्या निमंत्रण दिया जा रहा है? बार बार निकलो कुंत जगत से और आओ वैकुंठ धाम में। तो कुमारस ने इन दो को श्राप दिया और जय विजय ने श्राप को स्वीकार कर लिया। आप देखते हो कि परीक्षित महाराज को श्रृंगी ब्राह्मण बालक ने श्राप दिया था। क्या था श्राप? कि 7 दिन के पश्चात तुम्हारी मृत्यु हो जाए। परीक्षित महाराज ने श्राप स्वीकार कर लिया, उन्होंने कुछ इसका विरोध करने का प्रयास नहीं किया, उल्टा तैयारी की, संतों को निमंत्रण देकर और पूछ कर कि जिस व्यक्ति का अंत आने वाला है उसे क्या करना चाहिए। तो कुमारज ने श्राप के साथ ये वर भी दिया कि 3 जन्मों के पश्चात आप फिर से कहाँ लौट सकोगे, भगवान के धाम। तो यही जय विजय बन गए हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष। हिरण्यकशिपु की कथा तो आप सब जानते हो, हिरण्यकशिपु थे बड़े भाई, असल में दोनों ट्विन थे, पर हिरण्यकशिपु पहले प्रकट हो गए थे। तो हिरण्यकशिपु ने बड़ी गहरी तपस्या की। वैसे तो किसी से पूछा जाए कि क्या है आपका विचार हिरण्यकशिपु के विषय में, तो लोग कहेंगे असुर। हिरण्यकशिपु थे ऊंचे कोटि के भगवान के भक्त। हिरण्यकशिपु भगवान के दुश्मन बन गए थे विष्णु के, क्यों? क्योंकि उनके भाई हिरण्यक्ष का वध हुआ था भगवान के द्वारा, जब वो प्रकट हुए थे किस रूप में, वरा भगवान के रूप में। भगवान के अनेक अवतार हैं, पर इन अवतारों का वर्णन शास्त्र में प्राप्त होता है, और भगवान किसी रूप में भी प्रकट कर सकते हैं, पशु के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। तो हिरण्यकशिपु सिद्धांत तो पूरा जानता था। जब उनकी भाभी दुखी थी क्योंकि उनके पति का देहांत हो गया था भगवान के हाथों में, जब उनके भतीजे दुखी थे, शोक में थे क्योंकि उनके पिता का देहांत हो गया था, तो हिरण्यकशिपु वहाँ पहुँच कर उपदेश देने लगे। हिरण्यकशिपु ने कहा कि हम सब थोड़े समय के लिए इकट्ठा होते हैं, जिस प्रकार किसी रेस्टोरेंट में या पानी पीने की जगह में थोड़ी देर के लिए सब इकट्ठे होते हैं फिर जुदा हो जाते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने शिक्षा दी कि तुम क्यों दुखी हो, जो आत्मा है वो तो सनातन है, केवल शरीर नश्वर है। और आगे हिरण्यकशिपु ने कहा कि प्राचीन समय में एक राजा था जिसका नाम था राजा श्री अर्जुना, और राजा का युद्ध के मैदान में देहांत हो गया था। आज के जमाने में तो कोई युद्ध के मैदान में नेता लड़ता है कभी? जब युद्ध होता है तो नेता बिल्कुल छुप जाते हैं अंडरग्राउंड बंकर्स में। तो प्राचीन समय में जो क्षत्रिय राजा होते थे वो सबसे आगे युद्ध में लड़ते थे। आज तो अब क्या सबसे आगे कौन होते हैं, जवान। तो राजा की जो पत्नियां थीं बड़ी दुखी थी, जोर जोर से रो रही थी क्योंकि पति का देहांत हो गया था। और नियम ये है कि अंतिम संस्कारों को जल्द निभा देना चाहिए शरीर की त्यागे पर। उसकी पत्नियां इतनी जोर से रो रही थी महाराज की योजना की कि अंतिम संस्कार होने से अंतिम संस्कार होने नहीं दे रही थी। तो यामराज ने देखा, इनकी आवाज़ सुनी, यामराज ने एक छोटे बच्चे का रूप ग्रहण कर लिया। यामराज उस सभा में आए, यामराज ने कहा ये औरतें इतनी मूर्ख हैं, जोर जोर से रो रही हैं ये समझते हुए कि उनके पति को फिर से जीवित कर देंगे, ये नहीं समझ रहे हैं कि उनका अपना जीवन भी समाप्त हो रहा है तेजी के साथ। और यामराज ने एक उदाहरण दिया। एक समय एक शिकारी था जो पहले अन्न फेंकता था, और जब पक्षी खाने आते थे फिर पक्षी को मार देता था। तो यमराज ने कहा कि एक समय एक शिकारी ने पक्षिणी को आकर्षित किया था और अपने जाल में फंसा लिया था। जो पति था वो कह रहा था अब मैं क्या करूँगा, मेरी प्रिय पत्नी फंस गई है जाल में, मरने वाली है, मैं उसे बचा नहीं सकता, मेरे बच्चों की देखभाल कौन करेगा। और ऐसे सोचते सोचते वो भी शिकारी की नेट में फंस गया। तो यमराज ने कहा कि हम रो रहे हैं कि हमारे पति पिता का देहांत हुआ, तो समय के साथ हमारा शरीर भी हमें त्यागना पड़ेगा। तो ये प्रचार के पश्चात हिरण्याक्ष की पत्नी और बच्चे संतुष्ट हुए। आप सब का भी अनुभव होगा कि कभी आप ऐसी परिस्थितियों में जब जाते हो या किसी ने शरीर त्यागा हो तो सब शोक दुख में होते हैं, पर जब आप भगवद गीता के दूसरे अध्याय का उपदेश देते हो तो उसके साथ मन में शांति आती है। जब आप कठिन परिस्थिति में भी हो पर आप जब भगवद गीता को पढ़ते हो तो मन शांत हो जाता है। तो हिरण्यकश्यप पूरा सिद्धांत जानते थे, आखिर भगवान के सनातन साथी हैं। तो हिरण्यकश्यप की इच्छा थी कि उनके मृत्यु के सामने उन्हें झुकना नहीं पड़े। तो जब उन्होंने ब्रह्मा जी से ये कहा, हिरण्यकश्यप को ये पता था कि अगर मुझे किसी प्रकार का वर चाहिए ब्रह्मा जी के द्वारा तो मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। वो तपस्या करने के लिए मन्नरचा पर्वत में गए जहाँ के अपने पाँव के अंगूठे पर खड़े थे, हाथ ऊपर रखकर, कितने वर्षों के लिए, देवताओं के 100 वर्षों के लिए। आप योगा करते हो आप लोग, आप खड़े होकर हाथ ऊपर उठाकर देखो कितनी देर कर सकोगे, 10 मिनट 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा कितने देर, 1 घंटा, मेरे ख्याल से 1 घंटे से ज़्यादा कोई नहीं कर पाएगा। पर हिरण्यकश्यप इस पोजीशन में खड़े हुए देवताओं के 100 वर्षों के लिए, जो कि हमारे पृथ्वी के 36,500 वर्ष बनते हैं, 36,000 वर्षों के लिए हिरण्यकश्यप खड़े हुए हाथों को आकाश की तरफ रखते हुए, आकाश की तरफ देखते हुए, और एक बूंद पानी का नहीं पिया उन्होंने। थोड़े दिनों में निर्जल एकादशी आने वाली है, निर्जल, आप में से कौन कौन निर्जल एकादशी का पालन करोगे? तो आप एक दिन के लिए पालन करोगे और समझोगे कि आपने पूरे साल क्या है कि जिम्मेदारी उठा ली। पर हिरण्यकश्यप ने 36,000 सालों के लिए एक बूंद पानी का नहीं पिया, अंदाजा लगाओ। और उनके शरीर से माथे से इतना धुआं निकल रहा था कि सारे देवता शांत थे। और सारे देवता जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी निकले हिरण्यकश्यप को खोजने के लिए, और वो हिरण्यकश्यप के पास खड़े थे और पहचान नहीं पाए क्योंकि पूरे शरीर में इतनी चींटियां चल रही थी, उनका शरीर चींटियों का पहाड़ बन गया था। और उस स्थिति में हिरण्यकश्यप इतनी तपस्या कर रहे थे। फिर ब्रह्मा जी ने जब पहचाना ये है हिरण्यकश्यप जिसके शरीर को चींटियों ने खा लिया था, हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी के कृपा से फिर से युवक बन गए। और ब्रह्मा जी ने कहा ये सब तपस्या का लक्ष्य क्या है? जब उन्होंने लक्ष्य सुना तो ये ब्रह्मा ने कहा कि ये वर तो मैं नहीं दे सकता कि कभी तुम्हें मृत्यु के सामने झुकना नहीं पड़े। तो हिरण्यकश्यप ने कई और प्रकार के वर प्राप्त कर लिए। तो यहाँ आप पढ़ रहे हो कि भगवान जो प्रकट हुए नरसिंह देव जी के रूप में हिरण्यकश्यपु ने कई प्रकार के वर प्राप्त कर लिए। ना मेरी मृत्यु होगी दिन में या ना मेरी मृत्यु होगी आकाश में, पृथ्वी में और ना सागर में, ना किसी हथियार के द्वारा, मनुष्य के द्वारा या पशु के द्वारा। उनको अनुभव था हिरण्यकश्यप का, तो उन्होंने ये भी वर ले लिया कि किसी पशु के द्वारा नहीं होगी, ना अंदर ना बाहर, ना किसी हथियार के द्वारा। तो जब उन्होंने हर प्रकार का वर प्राप्त कर लिया, उन्होंने क्या सोचा, अब जो मेरी इच्छा थी वो प्राप्त हो गई। आप इन श्लोकों में आपने ये भी पढ़ा कि प्रहलाद को अनेक प्रकार के कष्टों का अनुभव करना पड़ा। प्रहलाद महाराज जो थे हिरण्यकश्यपु के चार बेटे थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध थे प्रहलाद। जब हिरण्यकश्यपु पर्वत में तपस्या का पालन कर रहा था, उस समय प्रहलाद माता के घर में थे, और इंद्र ने सोचा और देवताओं ने कि इस औरत के घर में जो बेटा है ये भी पिता जैसे निकलेगा, तो माता को घसीट कर ले जा रहे थे इस भावना के साथ कि जैसे ही बच्चा निकलेगा उसका वध कर दिया जाएगा। और उसी समय नारद मुनि वहाँ पहुँच गए, जिन्होंने उन्हें रोका और कहा इस औरत के घर में असुर नहीं पर ऊंचे कोटि का भक्त होगा। फिर नारद मुनि ने प्रहलाद की माँ को अपने आश्रम में स्थान दिया और साथ में उपदेश दिया। लेकिन नारद मुनि का एक ही भाव रहता है, क्या, सदा भगवान का उपदेश दिया जाए। तो हिरण्यकश्यपु समझ नहीं पाए कि कौन मेरे बेटे को इतनी शक्ति दे रहा है। जैसे आपने श्लोकों में पढ़ा, हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे को अनेक कठिन परिस्थितियों में लाया। ये नहीं कि भगवान के भक्तों को कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता, कभी कभी प्रचार के दौरान भक्तों को कठिनाई अनुभव करनी पड़ती है। तो वो कहते हैं क्यों ये कठिनाई क्यों अनुभव करनी पड़ रही है। और आप इतिहास में देखते हो कि भगवान के जितने प्रसिद्ध भक्त हुए हैं सबको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। हाँ, प्रहलाद महाराज भगवान के कितने प्रिय भक्त है। पर अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाजा हो जाए जो कष्ट उन्हें भुगतना पड़ा, और आप देखोगे आप आश्चर्य हो जाओगे। तो भगवान के भक्त कठिन परिस्थितियों से घबराते नहीं हैं, उल्टा क्वीन महारानी कुंती ने कहा है पहले स्कंद में, हे भगवान आप मेरे कष्टों को बढ़ाओ, क्योंकि आप जब कष्टों को बढ़ाते हो तो मैं आपके चरण कमलों का स्मरण करती हूँ, और जितना अधिक स्मरण करूँगी उतनी तेजी के साथ ही जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त होगा। तो दूसरे शब्दों में भगवान के जो भक्त हैं वो कठिन परिस्थितियों से घबराते नहीं। हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, उनका क्या दोष था, दिन में 3 लाख बार हरिनाम का उच्चारण करते थे, पर मुसलमान राजा को पसंद नहीं आया तो उन्हें 22 बाजारों में घसीट कर मारा। आप श्री प्रभुपाद जी के जीवन में भी देखते हो कि उन्हें भी अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो प्रहलाद महाराज शुरू से ही आत्मज्ञानी थे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था, माता के घर में। हिरण्यकश्यपु समझ नहीं पाए कौन मेरे बेटे को आकर ये दिव्य ज्ञान दे रहा है। प्रहलाद के 2 अध्यापक थे, संध्या और अमरका। तो हिरण्यकश्यपु उन्हें डांट रहा था। हिरण्यकश्यपु ने कहा थोड़ा अपनी जिम्मेदारी को ठीक नहीं निभा रहे, मेरे शत्रु के प्रतिनिधि आ रहे हैं और मेरे बेटे का दिमाग बदल रहे हैं। सुंदर मरका ने कहा, हम ब्राह्मण हैं, हम निर्दोष हैं, हमें दोष क्यों दे रहे हो? हम खुद नहीं समझ पाते कि कौन आपके बेटे को ये ज्ञान दे रहा है। और हिरण्यकश्यप ने बेटे को अनेक प्रकार से कष्ट पहुंचाया, पहाड़ों से फेंका, आग में फेंका, जहरीले सांपों ने उन्हें घेर दिया, जहर खिलाए गए, पर हर स्थिति में प्रहलाद की सुरक्षा की किसने? भगवान। जैसे आप शास्त्र में पढ़ते हो, राके कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राके के। आप भागवतम के पांचवें स्कंद में पढ़ते हो जत भारत की कथा। जत भारत एक समय एक खेती की देखभाल कर रहे थे, जबकि डाकू ने ये सोचकर कि यही थे डाकू ने उन्हें मारने का प्रयास किया। और जत भारत का दिमाग था कहाँ? भगवान के चरण कमलों के स्मरण कर रहे थे ध्यान पूर्वक, और उसी बलि के साथ जिसे उन्हें काटने की योजना बना रहे थे, देवी कली ने निकलकर उसी बलि के साथ डाकों को काट दिया। अमरेश महाराज भगवान के चरण कमलों का स्मरण कर रहे थे, दुर्वासा मुनि ने राक्षस पैदा किया था उन्हें जलाने के लिए, पर अमरेश महाराज का मन द्वारा भगवान के चरण कमलों का चिंतन हो रहा था। सर्वे मेना मना कृष्णा प्रादा मिले, और भगवान ने अमरीश की सुरक्षा की। तो कई अनेक उदाहरण हैं। तो प्रहलाद महाराज उन्हें अनेक कठिन परिस्थितियों में गिराने का शुरू ने डाला। एक दिन सुंदर मरका ने हिरण्य कश्यप को सूचना दी कि हमने आपके बेटे का दिमाग बिल्कुल बदल दिया है, आप चाहो तो परीक्षा ले लो, पूछो कोई प्रश्न आपके बेटे से, वो कहेगा कि आप हो सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति। तो यहाँ प्रहलाद, हालांकि हिरण्य कश्यप प्रहलाद को हमेशा कष्ट दे रहे थे, प्रहलाद जब भी पिता के सामने जाता था पहले उन्हें प्रणाम करता था। अंदाजा लगाओ, यहाँ है एक पिता जो कि बेटे को मारने का प्रयास कर रहा है, और बेटा जब भी जाता था पिता के सामने उनको प्रणाम करता था। तो इस प्रकार का भाव होना चाहिए सबके प्रति। तिनाद अपी सुनी चेना थरूर अपी सुना, मन ही ना मना देना किसी ना नहीं सर, सदा दूसरों को आदर दो। तो प्रहलाद की माँ ने उन्हें अच्छी तरह सजाया था, और प्रहलाद ने पिता को प्रणाम किया। फिर पिता ने पूछा, ये बताओ सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा क्या प्राप्त किए तुमने तुम्हारे अध्यापकों के द्वारा? उन्होंने सोचा था कि पिता की प्रशंसा होगी, पर बेटे ने क्या सुना दिया? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम आचम वर्तम दशम सख्यम आत्मनिवेदन नवद भक्ति का ज्ञान दिया। वो जैसे ही हिरण्य कश्यप ने सुना, क्रोधित होकर बेटे को नीचे फेंक दिया। तो प्रहलाद के विषय में आप ये भी पढ़ते हो किस प्रकार वो अपने साथियों को सदा उपदेश दे रहे थे। जैसे ही उनके अध्यापक कमरे के बाहर निकलते थे, प्रहलाद तुरंत ही उन्हें उपचार करते थे। तो हिरण्य कश्यप ने पूछा, ये शक्ति कहाँ से आ रही है तुम्हें? और हिरण्य कश्यप प्रहलाद ने क्या कहा? ये शक्ति वहाँ से आ रही है जहाँ से आपकी शक्ति आ रही है। जैसे कि गर्मी के मौसम में आप एयर कंडीशनर कूलर चलाते हो, पंखा चलाते हो, पर उसकी शक्ति कहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रिक पावर हाउस से, और सर्दी में क्या चलाते हो, हीटर, उसकी शक्ति भी आ रही है पावर हाउस से। तो प्रहलाद ने कहा कि मेरी शक्ति वहाँ से ही आ रही है जहाँ से आपकी शक्ति आ रही है। तो हिरण्यकश्यप के शत्रु थे भगवान। तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, कहाँ है तुम्हारे भगवान जिसमें तुम्हारी इतनी श्रद्धा है, जो हमेशा तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे भाई का वध किया था, कहाँ है विष्णु? और प्रहलाद ने कहा, हर स्थान में। और जब हिरण्यकश्यप ने तलवार द्वारा पूछा, छत में है, इस दरवाजे में है, इस खंभे में है, जब तब उन्हें सूचना मिली कि खंभे में भगवान है, तो हिरण्यकश्यप ने खंभे को मारा जोर से अपनी तलवार से, और फिर कौन प्रकट हुए तो उस खंभे से, भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए। आज के श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान प्रकट हुए नरसिंहदेव के रूप में। जब उन्होंने ये अद्भुत रूप नरसिंहदेव का देखा तो उन्हें पता लग गया भगवान स्वयं प्रकट हो गए, और इतनी जोर से आवाज आई थी कि देवताओं ने भी सुन लिया, और देवता सोचने लगे शायद सृष्टि नष्ट हो रही है। और फिर हिरण्यकश्यप और भगवान नरसिंहदेव के युद्ध में अंत में भगवान नरसिंहदेव की विजय हुई, और भगवान ने अपने आप को प्रकट किया इस अद्भुत रूप में। और प्रहलाद महाराज ने भगवान से क्या मांगा, भगवान इतने क्रोधित थे हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात कि लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, कोई भी उनके निकट आने को तैयार नहीं था। फिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को भेजा, और जैसे ही प्रहलाद ने भगवान को हार चलाया, भगवान का क्रोध तुरंत समाप्त हो गया। तो हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात प्रहलाद ने एक प्रार्थना की भगवान से। प्रहलाद ने कहा, हालांकि मेरे पिता असुर थे, हालांकि उन्होंने मुझे इतना कष्ट दिया, हालांकि उनका सारा प्रयास था कि मेरा वध हो जाए, मेरी एक छोटी प्रार्थना है कि आप उनका उद्धार कर दो। क्या हिरण्यकश्यप का वध हुआ था भगवान की गोद में ब्रह्मा जी के सारे वचनों का पालन करते हुए। तो भगवान ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं। और आगे भगवतम में समझाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त बन जाए तो 21 पीढ़ी तक सब रिश्तेदारों का उद्धार हो जाता है। और फिर सारे देवता आए, बड़े सुंदर स्तुतियों द्वारा उन्होंने भगवान का गुणगान किया। तो आज के श्लोकों में कहा जा रहा है कि भगवान नरसिंहदेव जी के रूप में प्रकट हुए अपने भक्त प्रहलाद की सुरक्षा के लिए, और हालांकि हिरण्यकश्यप ने अत्यंत अनेक रूप से प्रयास किया था प्रहलाद का वध करने के लिए, वो सफल हुए नहीं हुए। तो एक तरफ से तो भक्त है, कठिन परिस्थितियों से घबराता नहीं, दूसरा भक्त को पूरा विश्वास रहता है क्या कौन थे प्रति जानी ने हमें भक्त प्रमेश्वर। अब भगवान ने क्या कहा, हे अर्जुन, तुम विश्व को ये सूचना दो क्या कि मेरा जो भक्त है कभी भी नष्ट नहीं होगा। तो आज के श्लोकों में ये बताया जा रहा है किस प्रकार जय विजय ने जय विजय को श्राप दी गई, जय विजय ने श्राप स्वीकार कर लिया, पर उनके मन में एक ही इच्छा थी कि हर स्थिति में हम भगवान का स्मरण करें। तो ये भाव हम सबका होना चाहिए। तो आप कहोगे कि भाव अनुकूल करना तो बड़ा कठिन है, मन भटकते रहता है, पर अगर आप श्रवणम कीर्तनम करोगे ध्यान से, जैसे भक्तों से निवेदन किया जाता है 16 माला का ध्यान पूर्वक जाप करने के लिए, तो अगर आप श्रवणम कीर्तनम करोगे ध्यान से, तो विष्णु स्मरणम जो कि जय विजय की इच्छा थी। जय विजय को ये भय नहीं था कि हमें अभी वैकुंठ धाम छोड़कर जाना है, उनके मन में यही भय था कि हम भगवान को किसी प्रकार से नहीं भूलें। और ये भय हम सब में होना चाहिए कि हम भगवान को कभी भूलें नहीं, क्योंकि भगवान को भूलोगे तो क्या आएगा बचा? माया का। कृष्ण सूर्य सम माया हाया निकाला, यहाँ कृष्ण तायनी माया ना निकाला। जहाँ कृष्ण है वहाँ माया का कोई स्थान नहीं। जिस प्रकार जहाँ सूर्य है वहाँ अंधेरेपन का कोई स्थान नहीं। तो ये होना चाहिए हम सब का भाव कि हम हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करें। और भगवान का स्मरण करना असंभव नहीं है, कठिन है पर असंभव नहीं। अगर हम प्रयास करें तो अवश्य ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। खास करके अगर आप ध्यानपूर्वक हरि नाम का जाप करो। तो हिरण्यकश्यप भगवान के शत्रु बन गए थे, और हालांकि प्रहलाद को अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, पर हर स्थिति में भगवान ने उनकी सुरक्षा की। तो हम भक्तों में ये विश्वास रहना चाहिए कि अगर हम ध्यान से सेवा करेंगे, भक्ति योग में जुड़ेंगे, तो परम भगवान भी हमारी सुरक्षा करेंगे। आगे के श्लोक में कहा जा रहा है कि भगवान हरि के हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं, और भगवान का सबसे समानता का व्यवहार रहता है। वह हालांकि हिरण्यकश्यप ने अनेक रूपों से प्रयास किया, भगवान ने हर स्थिति में हिरण्यकश्यप की सुरक्षा की। हम खुद अनुभव करते हैं, हमारे इस्कॉन संस्था के भक्त कठिन परिस्थितियों में प्रचार करने जाते हैं। भारत में तो इतनी कठिन परिस्थिति नहीं है क्योंकि आप खुले रूप से प्रचार कर सकते हो, पर विश्व के कई स्थान हैं जहाँ की प्रचार करना बड़ा कठिन है, पर हमारे भक्त जाते हैं, कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। क्यों? क्योंकि मन में एक ही भाव है, क्या? चैतन्य महाप्रभु जी का संदेश है, क्या? जाड़े दागोता ये कहो कृष्णा उपदे, कि जिसे भी तुम मिलो मुझे कहो कि कृष्णा का संदेश स्वीकार करो। अगर विश्व में सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो इस संदेश की बहुत आवश्यकता है। तो भगवान जब प्रकट हुए नरसिंहदेव के रूप में, उन्होंने हिरण्यक ब्रह्मा जी के सारे वनों का पालन करते हुए प्रकट हुए, और हिरण्यकश्यप का वध हुआ। तो हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रयास किया कि किसी प्रकार से उनके बेटे का वध हो जाए। तो इसी प्रकार आप देखते हो जब हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों से घसीट कर ले जा रहे थे, क्या था हरिदास का दोष? उनका केवल ये दोष था कि मुसलमान खानदान में जन्म लिया था और उन्होंने हरि नाम को स्वीकार किया था। और चंद काजी और राजा के प्रतिनिधियों ने बहुत प्रयास किया और रोक नहीं पाए। तो चंद काजी ने कहा, ले जाओ इसे अलग अलग बाजारों में पीटते जाओ। और अनुभव ये था कि जब लोगों किसी को घसीटते थे मारने के लिए, दूसरे या तीसरे बाजार में पहुंचने पर उस व्यक्ति का देहांत हो जाता था। पर हरिदास को 22 बाजारों तक घसीट कर ले गए, और हरिदास भगवान का नाम लेते गए। फिर हरिदास ने ये सोचा कि ये जो मुझे पीट रहे हैं, अगर मैं जीवित रहूंगा तो राजा इन्हें नहीं छोड़ेगा जिंदा। देखो क्या भाव वैष्णव का, यहाँ हरिदास को पीटा जा रहा है, हरि नाम जाप करते जा रहे हैं, और हरिदास ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। बोलता ये सोच रहे हैं कि जो मुझे पीट रहे हैं उनको मैं कैसे बचाऊं। ये भाव केवल वैष्णव अनुकूल कर सकता है। और तो हरिदास ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उनके जैसे उन्होंने शरीर त्याग दिया है। और फिर हरिदास जब ये सूचना चांदकाजी के पास पहुंची और राजा के पास कि हरिदास का देहांत हो गया है, चांदकाजी जो फैनेटिक मुस्लिम था, उस चांदकाजी ने कहा इस व्यक्ति ने धोखा किया हमारे धर्म के प्रति, इसको हमारे संस्कारों के कारण नहीं, अंतिम संस्कार नहीं देना चाहिए, फेंक दो इसे गंगा में। और फिर गंगा में फेंक दिया वो हरिदास, फिर गंगा के पार जाकर फिर जाप करने लगे पेड़ के नीचे। और जब वो जाप कर रहे थे पेड़ के नीचे, और ये सूचना पहुंची राजा तक, चांदकाजी तक, कि ये हरिदास जैसे उन्होंने सोचा था मर गया, आज भी हरिनाम कर रहा है। तो राजा खुद हैरान हो गया था। फिर राजा और चांदकाजी आए और हरिदास से क्षमा मांगी। तो ये उदाहरण हमने इसलिए दिया आपको क्योंकि इस श्लोक में आप पढ़ रहे हो किस प्रकार प्रहलाद महाराज की सुरक्षा परम भगवान कर रहे थे। हालांकि प्रहलाद महाराज को अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, भगवान ने उनकी सुरक्षा की। तो राके कृष्ण माने के माने कृष्ण राके के, और हिरण्यकश्यप सफल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनका जो भक्त था, उनके जो बेटा था, उनका भाव क्या था, सदा भगवान का चिंतन करना। तो भगवान जो हैं किसी का पक्ष नहीं लेते। हम सब अगर सुख और दुख अनुभव कर रहे हैं कर्मों के अनुसार। प्रहलाद महाराज ने शिक्षा देते हुए कहा जिस प्रकार दुख आता है बिना मांगे, सुख भी आएगा बिना मांगे। दुख की प्रार्थना कोई करता है? कोई करता है? पर दुख आता है कि नहीं? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं जिस प्रकार दुख आता है बिना मांगे, सुख भी आता है बिना मांगे। तो हे मूर्ख व्यक्ति, अधिक प्रयास मत करो, कीमती समय का उपयोग करो। किस लिए? भगवान की सेवा करने के लिए। अक्सर हम देखते हैं कि लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं भौतिक कार्यों में कि उनके पास आध्यात्मिक कार्यों के लिए समय नहीं निकलता। पर प्रहलाद महाराज कहते हैं उतना ही सुख तुम्हें प्राप्त होगा जितना तुम्हारा खोटा है, उसे एक बूंद ज्यादा प्राप्त नहीं होगा। एक बूंद गैलन छोड़ो। तो हमें इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का उपयोग करना चाहिए। किस लिए? आध्यात्मिक करने के लिए। प्रहलाद महाराज ने उपदेश देते हुए कहा कॉमन आचर प्रज्ञ, ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, इसलिए हमें 5 साल की आयु से आध्यात्मिक ज्ञान अनुकूल करना आरंभ कर देना चाहिए। तो संक्षेप में आज के श्लोकों में आपने पढ़ा किस प्रकार जाय विजय को श्राप प्राप्त हुई और भगवान प्रकट हुए नरसिंहदेव के रूप में अपने भक्त प्रहलाद की सुरक्षा के लिए। और भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। किसी भौतिकवादी व्यक्ति को आप कहोगे कि भगवान प्रकट हुए नरसिंहदेव जी के रूप में आधे पुरुष आधे पशु, वो विश्वास नहीं करेगा, कहेगा ये कैसे संभव है। और भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। और ब्रह्मा जी के सारे वरों का पालन करते हुए भगवान प्रकट हुए नरसिंहदेव के रूप में। और परम भगवान सबके प्रति समानता का भाव रहता है, किसी का पक्ष नहीं लेते। अगर आप कष्ट कठिन परिस्थिति में हो तो हम अपने कर्मों का परिणाम भुगतते हैं। तो ये कहना कि आप भगवान के हमारा पक्ष नहीं ले रहे या दोष देना भगवान को, एक महान अपराध है। तो परम भगवान हर एक हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं। परमात्मा के रूप में हर कार्य के वो साक्षी बनते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि कौन है साक्षी हमारे कार्यों का, तो हमारे कार्यों के अनेक साक्षी हैं। कारमना देव नेत्रना, अनेक देवता साक्षी बन रहे हैं। और सूर्य के देवता, चंद्रमा देवता इत्यादि, और इन सब के अलावा भगवान परमात्मा के रूप में वो भी साक्षी बनते हैं। और भगवान साक्षी बनते हैं और वह अल्टीमेट कंट्रोलर भी हैं। ईश्वर सर्वभूत नाम हृदय रजुना तिष्ठति, हर एक हृदय में विराजमान है। सर्वस्य चाहम हृदय सानिवेशतो माता स्मृति ज्ञानम अपहनम चा। जब भगवान परमात्मा के रूप में देखते हैं कि आपकी आध्यात्मिकता में रुचि है, तो भगवान आपको जोड़ देते हैं भक्तों के साथ। और जब भगवान देखते हैं कि आप, क्योंकि परमात्मा के रूप में भगवान हर भाव को समझ लेते हैं, जैसे कि आप अगर किसी बगीचे से गुजर कर जा रहे हो तो फूल को सूंघने से आप पहचान सकते हो कौन सा फूल है, ठीक है नहीं। तो भगवान परमात्मा के रूप में हैं, हमारी सब इच्छाओं को सूंघ लेते हैं, समझ जाते हैं। जब भगवान देखते हैं कि इस व्यक्ति में इच्छा है भक्ति में जुड़ने के लिए, भक्ति पे आगे बढ़ने के लिए, तो भगवान फिर उस प्रकार की बुद्धि देते हैं। और जब भगवान देखते हैं ये व्यक्ति मुझे भूलना चाहता है, भक्ति में रुचि नहीं, भौतिक कार्य में जुड़ना चाहता है, फिर भगवान उस प्रकार की संगत देते हैं जिसके द्वारा आप भगवान को भूल जाओ। तो हम सब में ये इच्छा होनी चाहिए क्या, कि हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ें। तो प्रश्नात्मा समझ दर्शना, भगवान के भाव सबके प्रति बिल्कुल एक है और भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते। और भगवान गीता में क्या कहते हैं, ये यथमम प्रपद्यन्ते, जितनी श्रद्धा जितनी मात्रा में कोई मेरी शरण में आता है उतनी ही मैं उसे बुद्धि देता हूँ। तो परम भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है कैसे, भक्ति की विधियों के पालन के द्वारा। तो आज के इस अध्याय के 5 श्लोकों में एक बार फिर से आपने नरसिंहदेव भगवान की कथा संक्षेप में सुनी, शायद 2 हफ्ते पहले नरसिंह चतुर्दशी में भी सुनी थी, पर और इस अध्याय इस 7वें स्कंद में आप प्रहलाद महाराज की कथा पढ़ रहे हो, तो अगले कई महीनों के लिए आप प्रहलाद महाराज की कथा सुनोगे रोज और ज्ञान कक्षा होगी। तो कई बार लोग पूछते हैं आप थक नहीं जाते बार बार ये इस विषय के, तो हमारा क्या उत्तर है, नहीं, आध्यात्मिक विषय इस प्रकार का है कि अब दिन रात सुनोगे तो भी थकोगे नहीं। जैसे कली काले नामा रूप कृष्ण होता, जैसे भगवान अपने नामों के द्वारा प्रकट होते हैं, अब भगवान के नामों को दिन रात जाप करो तो भी थकोगे नहीं, तो भगवान ने नामों में पूरी शक्ति डाली है। तो श्रीमद् भागवत में 1 स्कंद से 12 स्कंद तक भगवान और उनके भक्तों की लीलाओं का वर्णन है। और श्रीमद् भागवतम को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए, इसलिए भागवतम के 1 स्कंद में कहा गया है नस्तप्रियेषु वदेषु नित्यं भगवत सेवय भगवती तम श्लोके भक्ति भावति नयति। जो व्यक्ति ध्यान से भागवतम को सुनेगा उसके हृदय में जो मैल है क्या होगा, निकल जाएगी, भक्ति भावना स्थापित होगी। तो आप लोगों के हृदय में मैल है या नहीं, थोड़ी या ज्यादा? और हरि नाम के विषय में चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, चेतो दर्पण, हरि नाम के उच्चारण का पहला लाभ क्या है, जो हृदय की मैल है दूर हो जाएगी। तो हमें इस मैल को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और ये मैल दूर होगी श्रवणम कीर्तनम के द्वारा। जब प्रहलाद के पिता ने पूछा, ये बताओ बेटा तुमने स्कूल में सबसे महत्वपूर्ण क्या शिक्षा प्राप्त की है, तो बेटे ने नर्मदा भक्ति का ज्ञान दिया जो कि उन्होंने नारद मुनि जी के द्वारा प्राप्त किया था। तो हम सब के लिए श्रवणम कीर्तनम बहुत ही आवश्यक है। और आप सब जो घरों में भी रहते हो प्रयास करना चाहिए मंदिर आने के लिए। इंटरनेट के कई लाभ भी हैं और नुकसान भी हैं। एक लाभ ये है कि आप घर में बैठकर क्लास सुन सकते हो, मंदिर आने की आवश्यकता नहीं। और नुकसान क्या है, मंदिर नहीं आते, भगवान का दर्शन भी इंटरनेट द्वारा मिल जाता है, पर खुदा के दर्शन लो तो ज़्यादा आनंद आता है। तो भागवतम क्लास सुनो, आई नाम में जाप करो, और इसके लाभ क्या होगा, जिंदगी जो महल है जो हम अनुभव करते हैं, काम क्रोध लो मोह मद मत्सर्य के रूप में, ये महल जो है दूर होगी। और जितने ध्यान से जाप करोगे, जितने ध्यान से भगवतम सुनोगे, उतनी ही तेजी के साथ ये महल जो है दूर होगी। और हमारा प्रयास रहना चाहिए हम रोज भगवतम को सुने, रोज ध्यान से जाप समाप्त करें, खाएं तो केवल कृष्ण प्रसाद करें और साधु संगत में रहें। इस प्रकार यहाँ भी हो रहते हुए आप अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ा सकोगे। आप सब, आप सब तैयार हो इसके लिए? चैतन्य महाप्रभु ने आध्यात्मिक जीवन बहुत सरल बना दिया है। जब कुर्मा ब्राह्मण ने यह इच्छा प्रकट की थी कि मैं छोड़कर आपके साथ घर चलना चाहता हूँ, महाप्रभु ने 5 नियम दिए। पहला था चैंट हरे कृष्ण, दूसरा था गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, तीसरा था साधु संग में रहो। तो जब आप मंदिर में आते हो क्लास होने, तो उस समय आप साधु संग में रह रहे हो, साधुओं के साथ बैठकर भागवत का अध्ययन सुन रहे हो, साधु संगत का लाभ उठाओ, भगवान के आर्चा विग्रह की उपासना। और पांचवा, धाम में रहो या जिस स्थान में रह रहे हो उस स्थान में आध्यात्मिक वातावरण बनाओ कि भगवान का स्मरण कर सको सदा। और अगर आप इन 5 कार्यों का पालन करोगे तो भौतिक संसार में रहते हुए भौतिक संसार के अपराधों से बच सकोगे। जैसे कि कमल का फूल जल में होते हुए जल को छूता नहीं, तो भौतिक संसार में रहते हुए भौतिक संसार के दोषों से हमें बचना है जो संभव है। अगर आप श्रवणम कीर्तनम और विष्णु स्मरणम का लाभ उठाओ, तो सब लाभ उठाने का तैयार है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, भक्तों को देर तो नहीं हो रही, कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण महाराज, जैसे हम यहाँ देखते हैं जय और विजय ने अपराध किया था 4 कुमारों को दरवाजे से रोक प्रवेश करने से रोक कर, उसी प्रकार हम देखते हैं कई बार क्राउड केयर की सर्विस होती है।
क्या सर्विस?
क्राउड केयर की सर्विस होती है,
क्राउड केयर
जन्माष्टमी पे मायापुर फेस्टिवल्स में, तो उसमें भी कई बार बहुत सारे भक्त नाराज हो जाते हैं। अगर हम ये सेवा कर रहे हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अपराध?
अगर आप क्राउड कंट्रोल कर रहे हो, अब इस भावना से कर रहे हो कि सबको भगवान का दर्शन मिल पाए, और हम एक सिस्टम बना रहे हो सब लाइन में खड़े हो या कोई धक्का धक्की नहीं करे, क्योंकि अगर आप क्राउड कंट्रोल का सिस्टम नहीं बनाओगे तो लोग एक दूसरे को धक्का मारेंगे, जैसे भी लोग निराश हो जाएंगे। और जय विजय की कथा में उन्होंने अपराध, एक रूप से अपराध किया और एक रूप से अपराध नहीं भी किया था, पर भगवान की इच्छा थी कि जय विजय भौतिक संसार में आए उनकी लीला को ज़्यादा मधुर बताने के लिए। एक रूप से अपराध नहीं भी था, उन्होंने देखा नंगे बच्चे भगवान के वैकुंठ धाम में आ गए हैं, अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं, पर जब भी उनका विनम्रता का भाव था तो भक्तों में होना चाहिए, तो उन्होंने स्वीकार किया कि हमने गलती की है, जो सजा देना दीजिए और केवल एक वर दीजिए कि हम उस हर स्थिति में भगवान का स्मरण कर सकें। ओके
महाराज, आपने बताया कि परमात्मा हम सबके हृदय में है और हम सबकी इच्छाओं को सूंघ लेते हैं, तो एक साधक प्रार्थना तो करता है कि भक्ति में आगे बढ़ूं, लेकिन कई प्रयास करने के बाद भी इंद्रदित्य की इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाता, तो परमात्मा फिर कैसे उसकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं?
नहीं, परमात्मा वहीं परीक्षा ले रहे हैं, साधक आगे बढ़ना चाहता है पर वो कीमत भी बढ़ने को तैयार है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मा परिता जमा में एकम शरणम रजा हम तो हम सुन पापे पर मोक्षा में मां सजा, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। तो साधक आगे बढ़ना चाहता है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मैं भक्ति में आगे बढ़ूँ, माया से बचूँ, तो भगवान हमें सुविधा दे रहे हैं, हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। जाप करें, ध्यान से शास्त्रों को सुने, सेवा भावना रखें।
हरे कृष्ण महाराज, जैसे अगर हम रोज भागवतम का श्रवण ना कर पाए और हम भागवतम रीडिंग कर रहे हैं तो उसमें कोई अंतर है?
रीडिंग मतलब घर में ही करो, ये रीडिंग करते रोज ये भी बड़ी अच्छी बात है, अगर हफ्ते में एक दो बार क्लास में आ सको तो भी अच्छा है, क्योंकि जब आप आते हो भागवत का श्रवण करने के लिए साथ में आपको साधु संगत भी मिलता है, ये प्राप्त होती है। वो जो पढ़ते हो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे भक्तों की एक कमी है कि वो किताबों को पढ़ते कम है।
हरे कृष्ण, हर परिस्थिति में भगवान के स्मरण का क्या अर्थ है? हर परिस्थिति में भगवान के स्मरण का क्या अर्थ है? जब हम थोड़े से कष्ट में होते हैं तो हम थोड़े से विचलित हो जाते हैं, या थोड़े से सुख में होते हैं तो विचलित हो जाते हैं, तो वास्तव में क्या अर्थ है स्मरण का?
मान लो कठिन परिस्थिति में हो, प्रहलाद महाराज अनेक कठिन परिस्थितियों में थे, आप धंधा कर रहे हो घर में कठिन परिस्थिति अनुभव कर रहे हो, पर उस स्थिति में भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए, हमें भक्ति में ही जुड़े रहना चाहिए। ये नहीं कि अभी कठिन परिस्थिति है हम जाप नहीं करेंगे, भागवतम नहीं पढ़ेंगे, गीता नहीं पढ़ेंगे, हमें भगवान ने इस कठिन परिस्थिति में क्यों डाला, हमें स्वीकार करना चाहिए कि अगर कष्ट भुगत रहे हैं भगवान की कृपा से हजारों गुना कम हो गए हैं, और अगर कोई सुविधा प्राप्त हो रही है तो भगवान की कृपा से ये प्राप्त हो रही है। ओके, श्रीमद् भगवद् नाम की हरे कृष्ण।
जोरदार कतल ध्वनि से गोपाल सिंह महाराज की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, और